नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैट शो अंतर के पटखोल में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज जिस मिस्ट्री या सीक्रेट या रहस्य का हम पर्दाफाश करें, ऐसा बोलें, या फिर जिसका हम रहस्योद्घाटन करेंगे, वह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र से जुड़ा हुआ, जिनका नाम है पार्वती। अर्थात कहा जाता है कि पार्वती को अमर कथा सुनाई गई पर्वत पर, और जिसके द्वारा वे अमरपुरी जाने का उनका जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। अब यूं तो हमने कई कहानियां इस विषय में सुनी हैं, परंतु इन सब कहानियों के पीछे सत्य आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आइए उसके लिए हम ब्रह्म कुमारी चक्रधारी बहन जी को आग्रह करें कि वे हमें कुछ बताएं इस विषय में। तो दीदी, हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये है कि पार्वती नाम का जो ये चरित्र है, कैरेक्टर है, इनका परमात्मा शिव के साथ क्या संबंध है?
वास्तव में पार्वती का पर्यायवाची शब्द तपस्विनी है, क्योंकि परमात्मा शिव जो सर्व आत्माओं के साजन है और सर्व आत्माओं की सजनीय है, परंतु जिस आत्मा ने उस प्रभु से इतना तप किया, इतनी लगन में रही, इतना योग कमाया कि सचमुच वो शिव की सजनी पार्वती कहलाएगी, सच्ची तपस्विनी कहलाएगी।
तो यानी कि परमात्मा को यूं तो अक्सर करके पिता जो शब्द है, पिता जो संबंध है उसके साथ उनको आत्माएं समझती हैं कि ये हमारे पिता हैं, गॉड फादर भी कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है। तो यानी कि आत्माओं का संबंध भगवान से साजन और सजनी के रूप में भी हो सकता है?
क्यों नहीं, परमात्मा के साथ तो सर्व संबंध है। जी, वो पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, लेकिन सर्व आत्मा के रूप में उन्हें साजन कहा गया है। और सर्व आत्माओं को जो भक्तियां हैं, जो प्रभु को याद करती हैं, उनकी सजनियां कहलाती हैं।
तो ये कौन सी अमर कथा है जो पार्वती या फिर आत्माएं, जैसे कि आप हमें बता रही हैं, आत्माओं को सुनाई गई, कौन सी ये अमर कथा है?
वास्तव में बहुत प्रसिद्ध प्रचलित अमर कथा है कि शिव ने पार्वती को सुनाई।
इसका सत्य भाव क्या है कि कौन सी अमर कथा, अमर कथा क्यों कहा गया?
क्योंकि कथा उसी को कहा जाएगा जो बात की पुनरावृत्ति होती, उसे कथा कहा जाता है। जैसे कभी कोई घटना घट जाए और कोई बार बार उसकी चर्चा करता रहे तो कहने में आता है कि आपने कथा लगा के रखी है। तो वास्तव में ये वो अमर कथा है, वो सत्य कथा है, जिस कथा का कभी नाश नहीं होता है। अर्थात संसार की पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है, सृष्टि में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, आदि, मध्य और अंत, इसकी गाथा क्या है, ये सारी कहानी कल्प पूर्व की भांति कैसे वो रिपीट होती है, ये सब पूर्ण रूपेण, ये सब कुछ जो सुनाया गया उसी को ही अमर कथा कहकर पुकारा गया है, क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता है। आदि मध्य अंत की कहानी परमात्मा ने सुनाई थी और कल्प पूर्व भी सुनाई थी, आज भी सुना रहे हैं और कल पश्चात फिर सुनाएंगे।
पर जैसा आप बता रही हैं, उसे तो ऐसा लग रहा है कि ये कथा मनुष्यों के ऊपर है, यानी ये ह्यूमन स्टोरी है, यानी मनुष्य के ऊपर बनाई गई ये एक स्टोरी है जिसमें बताया गया कि मनुष्य का आदि क्या रहा, मध्य क्या रहा, अंत क्या रहा।
वास्तव में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मनुष्यों पर कहेंगे कि संसार के चक्र के अनुकूल भी कहा जाएगा कि किस प्रकार सृष्टि का चक्र चलता है, इसका आदि कैसे होता है। प्रत्येक मानव को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम सृष्टि में रहते हैं, इसका मध्य किस प्रकार हुआ और इसके अंत में ये दशा जो आ गई, ये क्यों आ गई। तो ये सब चीजों के ज्ञाता तो ज्ञान के सागर परमात्मा शिव ही हैं, और वो हम आत्माओं को ये कल्प ये कथा अर्थात ये रहस्य स्पष्ट करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत।
तो बहन जी, हम संक्षेप में, ये तो अभी हमारे पास इतना नहीं समय होगा, परंतु संक्षेप में हम आपसे अवश्य जानना चाहेंगे कि ये सृष्टि चक्र की कहानी क्या है, इसके पात्र मुख्य कौन से हैं, कितने समय तक ये चलती है, क्योंकि जब हम फिल्म भी देखने जाते हैं तो उसकी एक ड्यूरेशन होती है, 3 घंटे का या 2.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री होगी या जो भी। तो ये जो कहानी है ये कितने समय की है और कैसे ये डिवाइडेड है, इसके मुख्य कैरेक्टर्स कौन है?
वास्तव में देखा जाए तो ये अमर कथा का अर्थ ही है जो अविनाशी, जिसका कभी अंत नहीं होता है। लेकिन ये इस प्रकार के अविनाशी है कि हर कल्प कल्प ये रिपीट होता है, मानो 5000 वर्ष का एक कल्प है जिसमें आदि मध्य और अंत किस प्रकार चलता है, और फिर उसकी शुरुआत जब होती है तो उसी गाथा की फिर पुनरावृत्ति होती है, और प्रारंभ में जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, शुरू की सृष्टि सतो प्रधान सत्यु की सृष्टि कहलाती है, वहाँ का प्रत्येक मानव देवता कहलाता है, और धीरे धीरे वो 16 कला संपन्न संसार है, और धीरे धीरे सृष्टि कुछ नीचे की तरफ उतरती है, वो सूर्यवंशी सतो प्रधान सृष्टि है सत्यु की, और फिर त्रेता युग की सृष्टि जिसे 14 कला का संसार कहेंगे, और फिर धीरे धीरे नीचे जब उतरता आता है तो द्वापर युग में 8 कलाएं और कलयुग में 9 कला, कोई कला रहित हो जाता है। किस प्रकार ये संसार कैसे पुनरावृत्ति होती है, बहुत सुंदर गाथा परमात्मा ने इसकी सुनाई है, कैसे प्रारंभ में देवता और नंबर 1 सृष्टि का शासन करने वाला और प्रथम महाराज कुमार प्रथम पत्ता विश्व की आत्मा श्री कृष्ण।
प्रिय दर्शकों, जो बात अभी हम सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी चक्रधारी बहन जी के द्वारा, ये बहुत ही क्रांतिकारी बात यूं तो लग रही है, क्योंकि आज तक शायद किसी ने भी मनुष्य जीवन का जो आदि मध्य है अंत है इसके बारे में इतनी गहराई से ना तो कभी जाना होगा ना अनुभव से ऐसा बोला होगा। परंतु इस बात को हम जारी रखेंगे आगे, क्योंकि अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी इस ब्रेक के। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जिस चैट शो को लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसका शीर्षक है अंतर के पट खोल, और जिसमें आज जो पट हम खोल रहे हैं अपने अंदर के महाशिवरात्रि पर्व से ही जुड़े हुए, उसमें हमने पाया कि पार्वती का जो रहस्य है, पार्वती जो ये चरित्र है इसके पीछे क्या रहस्य है, पार्वती असल में कौन या किसे कहा जाएगा, और वो कौन सी कथा है। जिस अमर कथा के बारे में हम बात कर रहे थे, आइए उसको और आगे बढ़ाते हैं उस चर्चा को। तो दीदी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो अमर कथा है, शिव पुराण के अंदर ये कहा जाता है कि ये जो अमर कथा है ये पर्वत पर बैठकर सुनाई गई, इस बात के पीछे सत्य भाव क्या है, क्योंकि हम आपसे पर्वत तो कोई नहीं जानना चाहेंगे, परंतु ये सत्य भाव क्या है इस बात के पीछे।
क्योंकि सुना तो हमने भी ऐसे ही है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि कोई विशेष पर्वत की बात नहीं है, ये उच्च स्थिति का ही सूचक पर्वत है। क्योंकि जब आत्मा अपने तीनों कालों की बातें सुनती है तो उसकी स्थिति बहुत उच्च हो जाती है, और जैसे कि परमात्मा उसको उस उच्चता की स्थिति पर बिठाकर उसे सारी बात सुनाते कि ये आत्मा तू अजर है, अमर है, अविनाशी है, तू अपने पूर्व जन्मों को विस्मृत हो चुकी है, मैं तुझे तेरे जन्मों की गाथा सुनाता हूँ। और वे हम आत्माओं को यही सुनाते हैं कि तू आत्मा ही सत्युग में देवात्मा थी, और तू आत्मा ही पूज्य थी आधा कल्प सृष्टि पर, और आधा कल्प के पश्चात तू ही आत्मा पुजारी बनी।
आधा कल्प यहाँ पर क्या हुआ, आपने बताया कि कल्प 5000 वर्ष का होता है, आधा कल्प यानी 2500 वर्ष,
आधा कल्प आत्मा संपूर्ण पवित्र थी, और आधा कल्प के पश्चात जिसे कहा गया देवता वाम मार्ग में चले गए, वो आत्माएं नीचे गिरावट की तरफ जब आई तो पूज्य आत्मा ही पुजारी आत्माएं बन गई। और कैसे पुजारी से पुनः पूज्य बनते हैं, जब परमात्मा हमें हमारी बीती गाथा को सुनाते हैं।
अच्छा, इसीलिए इसे चक्र कहा गया या कथा कहा गया जैसे आप बता रहे हैं।
जी, क्योंकि कल पूर्ण दिवस सुनाया था और आज फिर से हमको सुना रहे हैं। हम विस्मित हो जाते हैं, नीचे उतरते हैं, जब तमोगुणी बन जाते हैं तो वो आकर पुनः हम आत्माओं को सतोगुणी बनाने के लिए हमारा सतोगुणी इतिहास बताते हैं।
अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कि अमर कथा सुनने के बाद अमरपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो ये अमरपुरी आप सत्युग को ही कह रही हैं?
अमरपुरी में सत्युग को भी कह सकती हूँ, और अमरपुरी में मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम को भी कह सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि ये अमरपुरी इसीलिए कहलाती हैं कि इनका कभी नाश नहीं होता है। अच्छा।
तो ये जो नया शब्द आपने अभी ऐड किया कि मुक्ति धाम परम धाम, तो ये भी इस दुनिया पर ही होता है, साकारी दुनिया में, कि ये से कुछ अलग है?
नहीं, गायन तो है कि ज्ञान बिना गति नहीं है। वास्तव में देखा जाए जब परमात्मा हम आत्मा को हमारे आदि मध्यंत की गाथा सुनाते हैं, तो उस गाथा के पश्चात आत्मा पुनः अपने पवित्रता की उन शक्तियों को ग्रहण करना या धारण करना शुरू कर देती। जब आत्मा पुनः पवित्र बनती है तो वापस उस धाम में जाती है जिस धाम में आत्मा देह रहित पूर्ण पवित्र स्वरूप में थी, उसी धाम को जो सूर्य चांद तारागण से भी परे, जिसको परम धाम कहा गया, वो आत्माओं का निजी धाम है, निजी घर है, वो इस साकार मनुष्य लोक से परे है।
हाँ, तो कहने का मतलब कि वो आत्माओं का घर है, मनुष्य आत्माओं का, और वहाँ से ही वो इस सृष्टि पर आती है, अपना पाठ बजाती है।
जी, क्योंकि
आपने बताया कि चक्र पूरा चलता है, तो जिसका जब पाठ होता है वैसे वो आकर करता है, जैसे कि हम आम दुनिया में देखते हैं कि कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं कुछ,
क्योंकि हम सब समझते जो यहाँ आया है उसको जाना तो जरूर है, जरा सोचने की बात है, आए हैं और जाना है, इसका मतलब कहीं से तो आए हैं, ना शरीर आया है ना शरीर जाएगा, हम सब देखते हैं ये शरीर यही बनता है यही मिट जाता है, लेकिन आने और जाने वाली चेतन या विनाशी शक्ति आत्मा है, वो ब्रह्म लोक से, परम धाम से, मुक्ति धाम से, ये भिन्न भिन्न नामों से उसे मैंने पुकारा, वो वहीं से सृष्टि मंच पर आती है, अपना रोल अदा करती है शरीर रूपी चोला लेकर के, और जब संपूर्ण रोल अदा कर लेती है तो कलयुग अंत में सर्व आत्माओं को वापिस अपने मुक्ति धाम में लौटना होता है।
जब हम इस अमर कथा का जिक्र कर ही रहे हैं तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि सत्य नारायण की कथा का भी कुछ ऐसा ही गायन है कि कहते हैं कि नर जो है वो नारायण बन सकता है सत्य नारायण की कथा सुनने से, नारी जो है वो लक्ष्मी का जो के जैसी या स्वरूप उनका है उनका बन सकता है, तो इस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि क्या सत्य है सत्य नारायण की कथा के पीछे, और वो सत्य नारायण की कथा क्या है?
वास्तव में सत्य एक परमात्मा है
जी,
जो अविनाशी है और वो चैतन्य है। वो सत्य परमात्मा नर को श्री नारायण बनाने वाले और नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं।
तो नर और नारायण में क्या अंतर है, क्योंकि शायद दोनों के पास एक जैसे ही दोनों होंगे
वास्तव में अगर देखें तो। शारीरिक रूप हाँ। से दोनों एक ही जैसे हैं। नर वो है जिसमें विकृतियां भी हैं और श्रेष्ठ गुण भी हैं,
लेकिन जैसे आज लोग हमें दिखाई देते हैं,
आज मनुष्य देखते हैं, आज तो अवगुण ज्यादा है गुण कम है, लेकिन एक समय था जब संपूर्ण गुणवान ही मनुष्य था जिन्हें देवता कहा गया
जी।
जब गिरावट में आत्मा आती है तो गुण और अवगुण दोनों आने शुरू हो गए, और आज तो अवगुण की मात्रा बढ़ चुकी है और गुणों की मात्रा बहुत कम हो चुकी है, लेकिन परमात्मा जब सृष्टि मंच पर आते हैं तो संपूर्ण अवगुणों का समूल छेदन कर हम आत्माओं को ज्ञान और योग के आधार से संपूर्ण गुणवान बना देते हैं। जब संपूर्ण गुणवान आत्मा बन जाती है वो नारायण कहलाती है, और जब आत्मा गुण और अवगुण दोनों के शिकार होती है वो नर कहलाती है। तो नर ऐसी करनी कर जो नारायण योनि अवतर, वास्तव में देखा जाए नर रूप को ही परमात्मा ज्ञान सुना करके श्री नारायण पद की प्राप्ति कराते हैं।
तो और ये सत्य नारायण की कथा क्या है, इसके पीछे अभिप्राय?
वास्तव में देखा जाए यही परमात्मा ने नर को नारायण बनाया था, और आज पुनः नर को श्री नारायण पद तक असीम होने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं, और ये वही कथा है जो परमात्मा ने सुनाई थी, क्योंकि आज तक जो हम कथा सुन रहे हैं वो कथा का महात्म सुन रहे हैं कि बूढ़े ब्राह्मण वेश में कंचन नहल दियो। वास्तव में परमात्मा ज्योति स्वरूप है और बूढ़े ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होकर के हमें, हम आत्मा को हमारे ही आदि मध्य अंत का ज्ञान जब देते हैं तो हम वो ज्ञानवान आत्मा बनती है, वो पवित्र आत्मा बनती है, जो पुनः हम नर जीवन से नारायण पद तक असीन हो सकते हैं।
तो यानी कि अमर कथा और सत्य नारायण कथा का जो जो रिजल्ट है या जो लाभ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है,
वास्तव में देखा जाए जब परमात्मा नर रूप में आते तो नर रूप में ही है, लेकिन उस आए हुए परमात्मा को पहचानना जरा मुश्किल होता है। इसलिए परमात्मा के ये महावाक्य हैं कि मुझे जानने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए और मुझे देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के आधार से वो हम आत्माओं को पवित्र करते हैं और हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान देकर हमें उस स्वरूप तक, उस स्थिति तक पहुँचाते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने समझा कि सत्यनारायण की कथा या अमर कथा जो हम आज तक सुनते आए हैं, उसको हम अपने जीवन में सही रूप से कैसे ला सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। परंतु अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से आने के बाद हम ये अवश्य दीदी से जानना चाहेंगे कि ये जो अमर कथा है ये परमात्मा शिव ने किस समय सुनाई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैट शो अंतर के पट खोलने। तो दीदी, आपसे अब जो प्रश्न हम करना चाहेंगे वह यह है कि जिस अमर कथा के विषय में हम इतनी देर से सुन रहे हैं, उसकी सारी जो पढ़ते हैं आपने खोली हमारे सामने, ये अमर कथा सुनाने का जो समय है, क्योंकि तो समय का भी आप महत्व समझेंगी, तो ये जो समय परमात्मा शिव चूज करते हैं या जिस समय वो ये सुनाते हैं हम आत्माओं को, वो कौन सा समय है?
वास्तव में परमात्मा कल्याणकारी शिव का समय सृष्टि पर आने का, उसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। पुरुषोत्तम संगम युग से मेरा तात्पर्य है जब कलयुगी रात्रि का अंतिम पहर होता है और उसके पश्चात सतयुगी सतोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव होने वाला होता है। इन दोनों युगों के मध्य का समय होता है,
यानी कि आज से 40,000 वर्ष के बाद, क्योंकि कलयुग की आयु तो यही बताई जाती है कि अभी इसको और 40,000 वर्ष है।
नहीं, वास्तव में देखा जाए तो जब पार्टीशन से पहले की संख्या देखिए, जनसंख्या कितनी थी, और आज की जनसंख्या आप देखिए कितनी हो गई, और सचमुच अगर 40,000 वर्ष और चलेगा तो मैं नहीं समझती हूँ कि मनुष्य कल्पना अतीत उसकी जनसंख्या हो जाएगी वो कैसे एडजस्ट कर सकेगा। ये बहुत शीघ्र, ये जो समय चल रहा है, मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहूंगी कि ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय ही चल रहा है, क्योंकि रात्रि का संबोधन तामसिकता से है और आज के जगत को हम तामसिकता की पूर्ण श्रेणी पर पहुंचा हुआ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन दिहाड़े आज मनुष्य बुराई कर रहा है, अत्याचार है, अनाचार है, पापाचार है, रिश्वत है, भ्रष्टाचार है, जो भी बुराइयां हैं वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही हैं। आज वही कलयुग का अंतिम पहर चल रहा है और इसी कलयुग अंतिम पहर के पश्चात ही पुनः सतयुग का संसार आएगा, और ये कलयुग और सतयुग का पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें स्वयं सर्वशक्तिवान शिव पर काया प्रवेश होकर के ज्ञान और योग की शिक्षा से इस सृष्टि का पुनः परिवर्तन का कर्तव्य कर रहे हैं। वो कथा वो इस समय सुना रहे हैं, आत्माओं को आत्माओं के जीवन गाथा फिर से बता रहे हैं कि ये आत्माएं तुम्ही देवता थी, अब फिर से स्वयं को देवता बनाओ, तुम्ही नारायण थी, आज इस देव भूमि भारत को फिर से देव भूमि बना दो। ये यही समय है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है।
वैसे तो पुरुषोत्तम मास भी मनाया जाता है दुनिया में, तो वो यही बाकी में अगर देखा जाए तो ये पुरुषोत्तम समय ही पुरुषोत्तम चल रहा है,
क्योंकि पुरुषोत्तम मास भी भक्ति में यादगार रूप में कायम है। इसलिए लोग गंगा जी में स्नान करने जाते, जैसा कि मैंने कहा, जल के स्नान से नहीं लेकिन ज्ञान के स्नान से ही पावन होंगे, दान पुण्य करते हैं। ये दान पुण्य तो बहुत किया और करना अच्छा है, करते चले जाएं, लेकिन मूल धन पुण्य है अपनी बुराइयों का, विकारों का। जब तक हम अपनी कमियों और कमजोरियों का दान नहीं कर देंगे, बुराइयों को जीवन से नहीं निकाल देंगे, आत्मा पवित्र कैसे बनेंगे? तो ये वो पुरुषोत्तम युग चल रहा है जिस समय हम अपनी बुराइयों को ईश्वर के अर्पित कर देते हैं। प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल ये कमियां और कमजोरियां हैं, यही मैं आपको भेंट देती हूँ, और सचमुच वो भोले भंडारी प्रभु मेरी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे और मुझे गुणवान बनाकर अपनी जो उनके हम बच्चों के प्रति आशा है कि मेरे बच्चे देव बने, जरूर हमको देव बना ही देंगे।
तो इस अमर कथा को सुनने का भाग्य कौन सी आप कर सकती है, क्योंकि ये भी एक अच्छा वो है विषय है जानने का कि भाई क्या सभी सुन पाती हैं।
वास्तव में देखा जाए तो सर्वशक्तिवान परमात्मा कल्याणकारी सर्व आत्माओं के पिता है और सर्व को इस प्रभु द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की हर आत्मा को भाग्य प्राप्त हो सकता है। अब भाग्य प्राप्त कौन करता है वो तो हर एक के अपने ऊपर है और देखने में ऐसा ही आया, जिसने उस परमात्मा शिव को बहुत काल से अपना पिता बनाकर अपनी बुराइयों का त्याग करने का संकल्प किया है, सचमुच वो परमात्मा पिता के समीप ही समीप आते चले जाते। बाकी सभी को अधिकार है, कोई भी आत्मा उस ज्ञान को सुन सकती है।
तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्राप्तियां होती हैं इस कथा को सुनने के बाद, क्योंकि हर कथा के पीछे कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है, इसीलिए सभी लोग भागते हैं उसे सुनने के लिए। तो इस अमर कथा को सुनने के पीछे क्या प्राप्तियां हैं?
मैं जो अपने अनुभव से कहूंगी और अपने से इसी ईश्वर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुभव से कहूंगी, मनुष्य जीवन में प्राप्त करना चाहता है शांति, प्राप्त करना चाहता है आनंद, प्राप्त करना चाहता है शक्ति। उस सर्वशक्तिवान की इस कथा से, इस ज्ञान से, और ज्ञान में उन्होंने एक सब्जेक्ट हमको दिया है, वो है योग। क्योंकि जब मुझे किसी चीज की समझ आ गई तो समझ को प्रैक्टिकल लाने के लिए मुझे शक्ति भी चाहिए, और वो सब्जेक्ट है ईश्वर से लगन। उसके आधार से आत्माओं को शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, इन सब चीजों का इस साकार जगत में मायावी दुनिया में रहते हुए आत्मा अनुभव कर सकती। और सचमुच इतना सरल प्रतीत होता है, ऐसा लगता है सभी मनुष्य आत्माएं क्यों नहीं उस परमात्मा से सच्ची शांति और सच्चे आनंद का अनुभव कर लेती।
आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया योग, तो योग के नाम पर तो आज हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत उपलब्धियां और प्रगति चल रही है, शोध भी चल रहे हैं। आप किस योग की बात कर रही हैं?
योग शब्द मैंने अवश्य यूज किया, लेकिन योग का भी अर्थ है संबंध या जोड़। यहाँ आत्मा का परमात्मा से संबंध या जोड़ का नाम ही मैंने योग कहा है।
जी। आप हमें इसके बारे में और थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं कि इस योग का नाम क्या है और कैसे इसकी प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है?
क्योंकि हम कई बार योग शब्द को समझने को भारी ना समझ जाए तो हम उसे याद भी कह देते हैं, लेकिन प्रचलित शब्द योग है। क्योंकि योग छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी कहेगा योग का अर्थ है जोड़। तो कैसे आत्मा का परमात्मा से जोड़, क्योंकि देहधारी से मिलने के लिए हमको इस काया का आधार लेना पड़ेगा, लेकिन वो सर्वशक्तिवान परमात्मा तो अकाय है, वो तो स्वयंभू है। उनसे अगर मुझे मुलाकात करनी है, मिलना है, तो मुझे स्वयं को मन से भी बुद्धि से भी इस देह को भूलना होगा और केवल मात्र ये याद रखना है मैं तो एक आत्मा हूँ। और जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती है तो बिना पाँव के उस प्रभु ज्योति स्वरूप से मिलन मना सकती है, और बिना हाथों से बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा से सर्व वरदानों को प्राप्त कर सकती है।
तो इस योग का नाम आपने हमें नहीं बताया कि इस योग को कहते क्या है।
इसको मैं सहज योग कहूँगी।
जी।
इसको मैं राज योग कहूँगी।
जी।
इसको कर्म योग कहूंगी, इसको बुद्धि योग कहूंगी। क्योंकि बुद्धि का ये योग है, किसी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर आधारित योग नहीं है। इसे राजयोग मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आत्मा का कर्म इंद्रियों के ऊपर शासन हो जाता है। इसे सहज योग कहती हूँ क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध है और संबंध के आधार से उन्हें याद करना को कठिन नहीं होता।
चक्रधारी बहन जी, आज के एपिसोड में आपने हमें बहुत सारी, मैं कहूंगी कि जो रहस्य थे महाशिवरात्रि पर्व से जुड़े, आपने हमें बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम समझते हैं कि आज आप यह अवश्य जान गए होंगे कि पार्वती, जिनको हम भक्ति मार्ग में या भक्ति के अंदर हम पार्वती की कितनी पूजा करते हैं, कितने सारे व्रत उपवास रखते हैं उनके नाम से, तो आज हम जान गए होंगे कि सही मायने में पार्वती शब्द का अर्थ क्या है या पार्वती कौन है या थी। और दूसरी बात कि अमर कथा या सत्यनारायण की कथा, ये सही मायने में इसका लाभ जो है वो किन आत्माओं को प्राप्त होता है। हम समझते हैं कि आज की इस चर्चा से आप सभी को अवश्य लाभ हुआ होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में अंतर केपट खोल के। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं,